लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ,
आज के प्रसारण विषय हैं रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।
श्रोताओ,
मानव के रूप में हम अपने को विभिन्न तरह के गुणों से विभूषित करने की चाह रखते हैं। हम कई बातों, हुनरों और कलाओं में अपने को निखारने और गुणों में निपुण होने की आशा करते हैं। इसके लिए हम निरंतर अभ्यास करते और कई तरह से प्रशिक्षणों के दौर से होकर गुजरते हैं। इस भांति ज्ञान की लालसा और उसके लिए हमारी साधना हमें गुण संपन्न व्यक्ति होने में मदद करता है और हम अपने उन गुणों और क्षमताओं के कारण दूसरों को, मानव समाज को अपनी सेवा देते जो हमें अपने मानवीय जीवन की पूर्णता का एहसास दिलाता है। श्रोताओं, आज माता कलिसिया पवित्र त्रित्व का त्योहार मनाती है। त्रित्व में ईश्वर जो हमारे लिए एक रहस्यात्मक सार हैं, हमें अपने विश्वास और उनके निधि में बने रहने के कारण हमें अपनी प्रज्ञा और विवेक से विभूषित करते हैं, जो हमारे लिए सभी ज्ञान का स्रोत हैं। त्रित्व में ईश्वर के वरदान स्वरूप हम अपने जीवन में उन बातों को सहज ही समझ पाने में सक्षम होते हैं जो हमारे लिए रहस्यात्मक और जटिल लगती हैं। अतः त्रित्व में ईश्वर हमारे लिए ज्ञान का वह भंडार है जिसके सानिध्य में आने से दिव्य प्रकाश का एहसास होता है, जिसके फलस्वरूप हम अपने जीवन के कठिनतम और द्विधा भारी परिस्थितियों में भी सहज ही उन बातों का चुनाव कर लेते जो लंबे अंतराल में हमारे लिए सही और उचित होती हैं। आइए हम त्रित्व में ईश्वर के महोत्सव हेतु लिए गए आराधना विधि सुसमाचार का श्रवण करते हुए अपने लिए उस दिव्य प्रज्ञा की मांग करें जिसकी रचना पिता ईश्वर ने सभी श्रेष्ठ प्राणियों और जीव जंतुओं से भी पहले की।
यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा।
श्रोताओ, सत्य का आत्मा जो पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही इस धारा पर व्याप्त है, हमें अपनी दिव्य ज्योति से आलोकित करे, जिससे हम अपने जीवन के द्विधा भरे क्षणों, मुसीबतों और हमारे जीवन की रहस्यमयी बातों को अच्छी तरह समझ सकें। श्रोताओ, आज का पहला पाठ हमारे लिए प्रज्ञा की उत्पत्ति का हाल प्रस्तुत करता है। संसार की उत्पत्ति से पहले ही ईश्वर ने प्रज्ञा का निर्माण किया। ईश्वर के द्वारा गढ़ी गई प्रज्ञा रूपी यह कृति स्वयं ईश्वर में और ईश्वर के साथ सृष्टि से पहले ही निवास करती थी। दिव्य प्रज्ञा इस भांति देखा जाए तो यह हमारे लिए स्वयं ईश्वरीय आत्मा की उपस्थिति और उसकी क्रियाशीलता को व्यक्त करती है, जिसके अनुरूप ईश्वर ने सारी पृथ्वी को जीवन से भर दिया। उन्होंने अपनी दिव्य प्रज्ञा में दुनिया की सारी चीजों को गढ़ा और उसे मानव के हाथों सौंप दिया। इतना ही नहीं, ईश्वर ने अपनी उस दिव्य प्रज्ञा को अपने अनुरूप बनाए गए मानव के साथ साझा करते हुए उसे मनुष्य के हृदय अंतःस्थल में स्थापित किया, जिसे पाने हेतु मानव को स्वयं अपने अंदर झांक कर देखने की आवश्यकता है। इस भांति यदि हम देखें तो यह ईश्वर की दिव्य प्रज्ञा है जो निरंतर हमारे हृदय की गहराई में हमसे बातें करती और हमें सत्य के मार्ग में दिशा निर्देशित करती है। श्रोताओं, रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ इस प्रज्ञा को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उड़ेले गए प्रेम की संज्ञा देता है, जिसे हम यीशु ख्रिस्त में अपने विश्वास के कारण पाते हैं। यीशु ख्रिस्त में अपने विश्वास के कारण हम पिता के द्वारा धार्मिक माने जाते हैं, क्योंकि हमारा यह विश्वास पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप हम उस सच्चाई की घोषणा करते हैं कि यीशु ख्रिस्त हमारे प्रेम के कारण मनुष्य का रूप धारण कर इस धरती पर आए, क्रूस पर मर गए और जी उठे हैं। विश्वास के इस सार की घोषणा में हम अपने को त्रित्वमय ईश्वर से संयुक्त होता पाते हैं, क्योंकि मानवीय मुक्ति योजना के इतिहास में हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर की सक्रिय सहभागिता को पाते हैं। श्रोताओं, यीशु ख्रिस्त में हमारा विश्वास पिता ईश्वर के संग हमारे मेल को व्यक्त करता है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए भेजा कि वे टूटे हुए प्रेमपूर्ण संबंध को पुनः स्थापित करें। अपने इस मेल मिलाप की प्रेरिताई को पूरा करने हेतु उन्होंने अपने को एक निर्दोष बलि मेमने के रूप में पूर्ण रूपेण निच्छावर कर दिया। यीशु ख्रिस्त ने स्वयं पाप नहीं किया, किंतु वे हमारे पापों के भागीदार बने और इस भांति उन्होंने हमारे लिए अनुग्रह का द्वार खोल दिया, जहां हम अपने को ईश्वरीय असंख्य वरदानों से विभूषित पाते हैं। उनमें अनुग्रह के भागीदार होते हुए इस तरह हम उनकी महिमा घोषित करते हैं, क्योंकि पुत्र के मरण में हमें नए जीवन की सौगात प्राप्त हुई है। श्रोताओं, संत पौलुस हमसे आग्रह करते हैं कि हम अपने दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि स्वयं मुक्तिदाता ईश्वर ने हमारे पापों के कारण दुखों और हमारे सारे कष्टों को अपने ऊपर वहन किया है। यह हमारे जीवन में तब होता है जब हम अपने को त्रित्वमय ईश्वर के वरदानों से आलोकित होता पाते हैं। हमारे जीवन के दुखों के कारण हम अपने लिए धैर्य की बातें सीखते हैं। अपने धैर्य के कारण हम जीवन की दृढ़ता में बने रहते और यह दृढ़ता हममें आशा उत्पन्न करती है जो व्यर्थ नहीं जाती है, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपने प्रेम में पवित्र आत्मा से विभूषित किया है। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त हमसे कहते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में नहीं समझते, लेकिन पवित्र आत्मा त्रित्वमय ईश्वर के आने पर वे सारी चीजें हमारे लिए स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि वह प्रज्ञा का वह आत्मा है जो हमारे लिए यीशु ख्रिस्त की शिक्षा को, यीशु ख्रिस्त की शिक्षा जो सत्य है, उसे स्पष्ट करेगा। सत्य का ज्ञान हमें स्वयं से रूबरू होने की मांग करता है, जहां हम अपने जीवन को झांक कर देखते हुए अपने हृदय से आने वाली पुकार को सुनने हेतु बुलाए जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का आत्मा जीवन के गूढ़ रहस्यों को हृदय की गहराई में शांतिमय तरीके से हमारे लिए व्यक्त करता है। आइए हम ज्ञान के स्रोत त्रित्वमय ईश्वर से निवेदन करें कि वे हमें अपनी प्रज्ञा से विभूषित करें, जिससे हम उनकी प्रेरणा से अपने कार्यों को उनके नाम की महिमा हेतु पूरा कर सकें।
राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार को यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लाइन से वैटिकन में मुलाकात की, जहां उन्होंने यूक्रेन में जारी युद्ध के अंत हेतु अपनी प्रतिबद्धताओं पर चर्चा की। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने 10 जून को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बतलाया कि संत पापा ने वॉन डर लाइन से वैटिकन राज्य सचिवालय में मुलाकात की और उनके बीच वार्ता सौहार्दपूर्ण रही। कहा गया कि संत पापा एवं यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा ने द्विपक्षीय अच्छे संबंधों एवं यूक्रेन में युद्ध के अंत हेतु कार्य करने की आम प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। साथ ही मानवीय आयाम एवं संघर्ष की निरंतरता के कारण खाद्य परिणाम पर भी ध्यान दिया गया। वक्तव्य में यह भी कहा गया कि उन्होंने यूरोप के भविष्य पर सम्मेलन के समापन एवं संघ के भविष्य के ढांचे के परिणामों के बारे बातें की। पत्रकारों के सवालों का उत्तर देते हुए वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने कहा कि संत पापा एवं यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा ने यूक्रेन में युद्ध, जलवायु और स्थायी वास्तुकला पर चर्चा की। वॉन डर लाइन ने पोप से मुलाकात करने के बाद वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन एवं वैटिकन विदेश सचिव महाधर्मदक्ष पॉल रिचर्ड गलाघर से भी मुलाकातें की। संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 11 जून को सड़कों की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध सर्देनिया के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मुलाकात की तथा उन्हें सुरक्षा गार्ड के रूप में उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया। संत पापा ने गौर किया कि सड़क सुरक्षा के कार्य के रूप में वे संवेदनशील एवं निशाने के क्षेत्रों, संस्थाओं और राजनीतिक स्थलों, एयरपोर्ट, रेलवे एवं भूमिगत मार्गों के पड़ावों, कला, पूजा एवं धार्मिक स्थलों की निगरानी करते हैं। संत पापा ने कहा, इस तरह आप राजधानी के क्षेत्र में अपनी दैनिक उपस्थिति की गारंटी देते हैं, जो जनता में शांति की भावना बढ़ाता है। मैं अपनी ओर से परमधम पीठ की विनम्र एवं महत्वपूर्ण सेवा देने हेतु अपना आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने कहा, वैटिकन सिटी के आसपास आपकी सेवा कार्यक्रमों के शांतिपूर्ण संचालन में मदद देती है। साल भर दुनिया भर के तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों को आकर्षित करती यह कार्य तत्परता, धैर्य, त्याग की भावना एवं कर्तव्य के एहसास की मांग करता है। संत पापा ने कहा कि उनका कार्य कभी कभी थकान देह होता है, किंतु समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी है। संत पापा ने पुलिस कर्मियों से कहा कि अपने मिशन काम को पूरा करने में वे याद रखें कि हर एक व्यक्ति ईश्वर द्वारा प्रेम किया गया है, उनकी सृष्टि है एवं सम्मान के योग्य है। उन्होंने उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उनकी कृपा से पोषित होकर अधिक समर्पण एवं अधिक चौकसी के साथ अपने कार्यों को संपन्न कर सकें। इंडोनेशिया की सरकार ने अपने देश का दौरा करने हेतु संत पापा फ्रांसिस को आमंत्रित किया है। उका न्यूज के अनुसार इंडोनेशिया ने आधिकारिक रूप से संत पापा फ्रांसिस को अपने देश का दौरा करने का निमंत्रण दिया है। धार्मिक मामलों के मंत्री यागुट चोलिल कोमास ने बुधवार को संत पापा फ्रांसिस से वैटिकन में मुलाकात की तथा राष्ट्रपति जोको विदोदो की ओर से निमंत्रण पत्र अर्पित किया। इंडोनेशिया के कार्तिक धर्मदर्श सम्मेलन के ख्रिस्ते एकता एवं अंतर धार्मिक मामलों के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष महाधर्मदर्श योहन्स हारून युओनो ने कहा कि कैथोलिक संत पापा के निमंत्रण से अत्यंत खुश हैं, क्योंकि वे उन्हें देखने के लिए उत्सुक हैं।
वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने शुक्रवार को घोषणा की कि अपने डॉक्टरों के अनुरोध पर और अपने घुटने के लिए चल रहे चिकित्सा के परिणामों को खतरे में न डालने की वजह से संत पापा फ्रांसिस ने अफसोस के साथ 2-7 जुलाई तक निर्धारित कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य और दक्षिण सूडान के लिए अपनी प्रेरित यात्रा को स्थगित कर दिया। यह प्रेरितिक यात्रा बाद में निर्धारित की जाएगी। प्रेरितिक यात्रा के दौरान संत पापा फ्रांसिस कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के दो शहर राजधानी किंशासा और गोमा का दौरा करने वाले थे और दक्षिण सूडान में उनका पड़ाव राजधानी जुबा था। उधर कैथोलिक महिला संगठनों के विश्व संघ का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 जून को रोम के पालाजो अल्टियरी में होने वाला है, जिसमें उनका फोकस लैटिन अमेरिका और अफ्रीका की महिलाओं पर रहेगा। कैथोलिक महिला संगठनों का विश्व संघ संगठन को विश्व महिला वेधशाला और लैटिन अमेरिका एवं अफ्रीका में इसके काम को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में महिलाओं पर कोविड-19 के प्रभाव पर इसकी पहली रिपोर्ट भी प्रदान करेगा। सम्मेलन का आयोजन WUCWO द्वारा लैटिन अमेरिका के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के सहयोग से अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, कोलंबिया, हैती, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के दूतावासों के संरक्षण में किया जा रहा है। सम्मेलन की घोषणा करते हुए एक बयान में कहा गया कि विश्व महिला वेधशाला का उद्देश्य महिलाओं को सामने लाना है, विशेष रूप से सबसे कमजोर, जो अपनी पीड़ा और अपनी क्षमता दोनों को लोगों की नजरों से दूर रखती हैं। इस तरह महिलाओं, उनके परिवारों, समुदायों और लोगों के अभिन्न मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए WWO अनुप्राणित और प्रेरित करेगा। गैर सरकारी संगठनों के बीच तालमेल सार्वजनिक नीतियों को नवीनीकृत करेगा और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा में योगदान देगा। उधर यूक्रेन में रूसी सेना से लड़ने के लिए मौत की सजा पाए दो ब्रितानियों के परिवारों ने कहा है कि उन्हें चिकित्सा और कानूनी मदद की तत्काल आवश्यकता है। पूर्वी यूक्रेन में दो ब्रितानियों और एक मोरक्को के नागरिक की दुर्दशा के बारे में बढ़ती चिंता के बीच यह अपील रूस समर्थक अलगाववादियों द्वारा क्षेत्र में बढ़ रही झड़पों के रूप में की गई है। दो ब्रिटिश, एडेन असलियन और शान पिनर, और मोरक्को के सादुन ब्राहिम भाड़े के सैनिक के रूप में यूक्रेनी सेना की ओर से लड़ते हुए पकड़े गए और रूसी समर्थक अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। उनका परीक्षण तथाकथित डोनेस्क पीपुल्स रिपब्लिक में हुआ, पूर्वी यूक्रेन का एक क्षेत्र मास्को समर्थित अलगाववादियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। ब्राहिम के पिता ने कहा कि जब रूस ने आक्रमण किया तो उनका बेटा भाड़े का सैनिक नहीं बल्कि यूक्रेन का छात्र था। ब्रिटिश अधिकारियों ने यह भी कहा कि ब्रिटेन के लोग पहले से ही यूक्रेन में रहते थे और कई वर्षों तक इसके सशस्त्र बलों में सेवा करते रहे। उन्हें अप्रैल में मारियोपोल के घिरे शहर की रक्षा करते हुए पकड़ लिया गया था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।